फोन करके अपने भाई को बुलाओ।
जनाब, मेरा भाई किस लिए आए, उनको किसी चीज का इल्म नहीं है। मैं लोन लेना चाहता था।
अगर उनको वाकई इल्म ना हो तो तुम्हारे जुर्म में है, अमानत में खयानत के जुर्म का भी इजाफा हो जाएगा। जाके इसके भाई को ढूंढ के लाओ, मुझे काम है उससे।
यस सर।
फिलहाल तुम दोनों गिरफ्तार किए जाते हो, चलें तशरीफ ले चलें।
गिरफ्तार किस लिए है सर, मेरी फैमिली इस वक्त सख्त मुसीबत और मुश्किलात में घिरी हुई है, उनको पता चल जाए बहुत बुरा होगा।
जनाब फराहमान साहब, आपका जुर्म बहुत संगीन है। जाली दस्तखत, हुकूमती दस्तावेजात का गैर कानूनी इस्तेमाल और बैंक को धोखा देना। फोन करके अपने भाई को बुलाओ।
लेकिन क्यों आखिर?
लगता है आपको मसले की संगीनी का अंदाजा ही नहीं है। अदालत मुंतकिल होने से पहले फोन करके कागजात के मालिक को बुलाओ, असल कागजात और अथॉरिटी लेटर के साथ, वरना तुम्हारा भाई भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अरे ऐसे कौन से सरकारी दस्तावेजात जाल किए गए, वो कागजात हमारे अपने हैं।
सिपाही इनको लेके जाओ।
आ जाइए बाहर। मैं जा सकता हूँ?
नहीं, आप भी आ जाइए। आइए।
लेकिन कहाँ?
आइए आइए मेरे साथ।
अच्छा, मेरा हाथ तो छोड़ो। आइए, कोई कत्ल तो नहीं किया है भाई?
अरे सर, लेकिन
आइए, मोबाइल है तुम्हारे पास?
जी हाँ, लेकिन भाई को फोन कर रहा हूँ।
नंबर दे दें, हम खुद फोन कर देंगे। आइए।
मुनीरिया वाले घर में गुजारे हुए दिन मेरी जिंदगी के बेहतरीन अय्याम में से थे। उसके बाद खुशी का रंग नहीं देखा हमने। अगर कोई और चारा होता तो मैं हरगिज़ उस घर से बाहर ना आती।
माफ कीजिएगा।
हमीद समझते थे छिपने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे।
यानी हमीद चचा इसीलिए मुनीरिया वाले घर से चले गए थे?
हाँ,
वो गए ताकि किसी को पता ना चले कि एडिक्ट है। आप क्यों मान गई इस बात को?
उस जमाने में वो सिर्फ अपनी बात चलाते थे, किसी की बात सुनते ही नहीं थे। उनका ये मानना था सब गलती पर है इल्ला वो। कहते थे ठीक हो जाऊंगा, फिर उनके साथ सुलह कर लूंगा। हमीद खुद को सबसे छुपाने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे। हमीद की जाहिरी हालात दिन ब दिन बदतर हो रही थी। वो जानता कि एक दिन सबको उसके नशे का पता चल जाएगा, इसीलिए तुम्हारे अबू के साथ वर्कशॉप के ऊपर झगड़ा कर लिया। तुम्हारे अबू हमें कुछ नहीं कहते थे, किसी को भी कुछ नहीं कहते थे। 2 साल हो रहे थे और सुरैया की वजह से तुम लोग मुनीरिया वाले घर से चले गए थे। उसके बाद हमीद को ये पछतावा होने लगा कि तुम्हारे अबू को क्यों उसने कसूरवार ठहरा दिया। कहता था कि सुरैया के साथ मिलजुल कर उसने मोहसिन को घर से बाहर निकाल दिया। और भी कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानते और मैं भी नहीं बता सकती तुमको।
चची जान, सुरैया फूफी को मेरे अबू क्यों बुरे लगते थे?
सुरैया को कौन बुरा नहीं लगता था, सबके साथ बुरी थी। और अगर ऐसा कोई दिन आता कि किसी ने उसके साथ बहस कर लिया तो हंगामा खड़ा कर देती थी। तुम्हारे अम्मी के भी बुरे ताल्लुकात थे, अलबत्ता उनका हक बनता था। कई बार बिला वजह उन्होंने तुम्हें पीट दिया था। तुम्हारे अबू जान बेचारे इस बीच हैरान रहते थे, किसकी तरफदारी करे, फूफी की या बीवी की। तुम्हारे अबू का अखलाक हमीद से बहुत मुख्तलिफ था, सुलहजू थे। मेहदी बेटा, किसी को बताया तो नहीं कि मुझे ढूंढ लिया है ना तुमने?
अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन आज कल मैं ज़रूर बता दूंगा।
मैंने हमीद से वादा किया है, कसम खाई है कि कभी भी उसका राज उसके फैमिली के सामने फाश नहीं होने दूंगी।
अब भी आपने नहीं बताया, मैं खुद जान गया हूं।
क्या करें सियावश?
डरो नहीं यार, मैं मरियां खुद हल कर देगा। इस बैंक में उसके बहुत ताल्लुकात हैं।
किन ताल्लुकात की बात कर रहे हो? सुना नहीं कि वो आदमी कह रहा था कि मैं मारियान को जानता तक नहीं?
मेहरान, मेरे भाई, अरे उस बैंक में उसके बड़े ताल्लुकात हैं, वरना हमारे लिए लोन का इंतजाम कैसे कर सकता था? यकीन मानो वो खुद आके हमें आज़ाद कराएगा।
सियावश, अगर इस पुलिस वाले ने मेहदी से बात की तो पानी सर से गुजर जाएगा। मेहती समझ जाएगा कि मैंने उसकी जगह जाली दस्तखत किए, समझ जाएगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। अगर मैं मारियां को कुछ करना है तो अभी अभी करना होगा। सियावश, खुदा के लिए कुछ करो यार।
मैं क्या करूं? मैंने उसे बहुत फोन किया लेकिन ऑफ जा रहा है मोबाइल।
उठा लो फोन को, शायद कोई जरूरी काम हो तुम्हारे साथ।
नहीं, कोई खास बात नहीं है, हमने वर्कशॉप बेचने के लिए रखवाई थी इसीलिए फोन कर रहे हैं। अब वर्कशॉप बिक गई है, चंद दफा फोन करेंगे, हमने उठाएंगे तो समझ जाएंगे कि फिर फोन नहीं करना चाहिए। चची जान, मैंने वर्कशॉप बेच दी है कि कोई नई जगह लेना चाहता हूँ, नई वर्कशॉप चलाना चाहता हूँ, अकेला हूँ, चाचा हमिद की मदद की जरूरत है मुझे।
मुझे तुम्हारे चाचा की कोई खबर नहीं है।
क्या मतलब?
ऐसे मत देखो मुझे, लैला की कसम मुझे कोई खबर नहीं है उनकी।
क्या लैला को देखने नहीं आते?
नहीं, जब लैला मिडिल स्कूल में पढ़ रही थी तो मुझे स्कूल से फोन आया, कहा गया कि लैला का बाप कई दिनों से स्कूल के आसपास घूम रहा है। मेरी तो जान ही निकल गई। स्कूल वालों ने कहा कि जाके उससे बात करूं, और हमीद ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से नशा छोड़ चुका है और मुकम्मल छोड़ना चाहता है। कह रहा था कि अकेले नहीं कर सकता, मुझसे मदद चाहता था।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है।
हाँ, बहुत अच्छा था, मैं भी बहुत खुश हुई थी। वो जाके एक गरज में चौकीदार बन गया, अपने हुलियों को ज़रा ठीक किया और अपना ख्याल रखने लगा वो। जब लैला सुबह घर से जाती थी तो वो घर आ जाता था, कहता था कि जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होगा लैला का सामना नहीं करेगा। हमसायों ने जब देखा कि लैला के जाने के बाद वो घर आ जाता है, उन्होंने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। मैं मजबूर हो गई इस बात को बताने पर कि मेरी बेटी का बाप है नशा छोड़ चुका है, शायद मैं फिर से उसके साथ रहना चाहूँ। उनसे रिक्वेस्ट किया कि लैला को कुछ न बताएं।
ये कब की बात है?
उन्हीं दिनों की बात है, 3-4 साल के पीछे, जब लैला का स्कूल उसे मिल गया। 2-3 महीने हुए थे इस माजरा को कि हमारे घर मालिक मकान ने उसके लिए काम भी ढूंढ लिया। ये तय पाया था कि ये उनकी फैक्ट्री में काम करेगा, लेकिन
लेकिन क्या?
कुछ नहीं, 2 हफ्ते के लिए गए और फिर नहीं आए।
तो शायद उन्होंने काम नहीं दिया होगा।
नहीं, वो तो काम पर ही नहीं गए थे। खुदा का शुक्र है कि मैंने लैला को कुछ नहीं बताया था, वरना फिर मैं अपनी पहली जगह पर आ जाती। उन दिनों जब लैला बहुत इसरार करती थी उनसे मिलने का।
लैला इस बारे में कुछ जानती है?
नहीं, मेरी बच्ची अगर जानती भी है तो जाहिर नहीं करती। 1-2 दफा जब मैंने उससे बात करना चाहा तो वो मुझे तसल्लियां ही देने लगी, उसने अपनी कोई बात नहीं की।
तो मेरे ख्याल में जानती है
थोड़ा बहुत।
अब चाचा कहाँ हैं? क्या दोबारा नशे की तरफ लौट गए हैं?
नहीं जानती मेहदी साहब, मैं उन पर तोहमत नहीं लगाना चाहती, मुझे उनका कोई इल्म नहीं है, जानना भी नहीं चाहती। लैला इस साल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का एग्ज़ाम देगी, अगर पास हो जाती है तो मुझे फिर खुदा से कुछ भी नहीं चाहिए, उसका मुस्तकबिल बन जाएगा। वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसने सुना है कि उसकी पुप्पी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर बनना चाहती है अपनी पुप्पी की तरह।
उसने कभी भी हमसे मिलने की जिद नहीं की?
क्यों नहीं, इब्तदा में बहुत जिद करती थी, लेकिन जब देखा कि मैं सख्त मुखालिफ हूँ तो फिर उसने इस बारे में जिक्र नहीं किया।
वाकई आपके पास हमीद चाचा का कोई एड्रेस आता पता नहीं?
नहीं मेहदी साहब, मुझे लैला की कसम, 6 महीने बाद उसने दरवाजे पर किसी को भेजा कि क्रेडिट कार्ड उसके पास था, कहने लगा इसमें कुछ रकम है, तुम लोग निकाल लेना।
मैं इस कार्ड को देख सकता हूँ?
मेरे पास नहीं है।
माफ कीजिए चाचा जान, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब भी चाचा जान उस अकाउंट में पैसे डालते हैं या नहीं?
हाँ, उसमें पैसा डालते हैं, बैंक से SMS भी आता है, लेकिन मैं कोई पैसे नहीं निकालती उसमें।
क्यों चाची जान? चाची जान क्यों?
डरती हूँ।
किस चीज से?
डरती हूँ कि ड्रग्स बेचने का पैसा हो और उसका असर मेरे बच्चे की जिंदगी पर आ जाए। मेरी जिंदगी तो तबाह हो ही गई, नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की जिंदगी भी तबाह हो जाए। ये इसलिए बता रहे हो कि तुम जानो कि हमीद को ढूंढ कर दादी के पास ले जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बल्कि पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा करना है।
चची जान आप मुझे एड्रेस देंगी?
किस लिए?
इसलिए कि चची जान आप हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी चची हैं। क्या मैं गर्मियों की उन रातों को भूल सकता हूँ जब आप छत पर मुझे किस्सा सुनाती थी, या जब सुरैया फूफू हमें मारना चाहती थी तो आप उनको रोकती थी और हमें भगा देती थी। आपको आपको इसके बाद अकेले नहीं रहना। मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक आप इजाज़त नहीं देंगे मैं लैला से नहीं मिलूँगा। आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा। ओह, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला नहीं है।
इजाजत है कि हम अंदर आ जाएं?
आइए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मेहनत की, आपने बड़ी जहमत की। इंशाल्लाह किसी दिन आपके भी काम आ सकूं इसी तरह।
कोई बात नहीं, हमारी
ड्यूटी है। आप जाइए।
ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़।
खुदा का काम हो गया, अच्छा हो गया।
जी फरमाइए।
जनाब आपने 10 दफा इस नंबर से मुझे फोन किया, क्या बात है?
आपका नाम क्या है?
फरहमंद हूँ जनाब, फरहमंद।
जनाब मेहदी फरहमंद?
जी हाँ।
सिक्योरिटी मरकज है?
सिक्योरिटी मरकज
जी, बैंक का सिक्योरिटी मरकज। आप मेहरान फरहमंद के भाई हैं, है ना?
माफ कीजिएगा, क्या हुआ?
हाँ, आपको यहाँ आना पड़ेगा।
किस लिए?
कुछ सवालात हैं उनका जवाब देने के लिए।
अच्छा, तो कहाँ पर आऊँ?
सोहरावर्दी रोड, शहीद मलिकी स्ट्रीट से पहले।
जी शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए। माफ कीजिए हाजी साहब, मुझे अपने भाई से नहीं मिलने दिया गया।
जब तक मामला वाज़े नहीं होगा हम उनसे मुलाकात नहीं कर सकते।
ये क्या है जनाब?
इन पेपर्स के नीचे जरा गौर से देखें, ये आपके दस्तखत नहीं है?
नहीं तो?
ठीक है, देखिए, पैमान मेमारियान नाम का एक शख्स आपके भाई मेहरान फरहमंद और उसके दोस्त सियावत सादत की मदद से जाली दस्तखत के जरिए हमारे बैंक के साथ फ्रॉड करना चाहते थे और गैर कानूनी तौर पर एक बड़ा लोन लेना चाहते थे। अच्छा, खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और बैंक की मैनेजमेंट की होशियारी से यह फ्रॉड नाकाम हो गया। अच्छा, अब इस बात के मद्देनज़र के मुमकिन है कि इस काम के पीछे जाल और रिश्वत खोरी का कोई बड़ा गुरोह, आपसे गुजारिश है कि इस बारे में हर कुछ जानते हैं तो हमें बता दें और कागज़ पर लिख दें। ये लीजिए।
हाजी साहब माफ़ कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं।
अलबत्ता जिस फर्द ने बैंक की सिक्योरिटी को खबर दिया था उसने कहा था कि आप बेगुनाह हैं और आपकी इतला में लाए बगैर कागजात बैंक को दिए गए हैं, लेकिन चूंकि कानूनी अथॉरिटी लेटर आपके नाम है इसलिए आप भी ज़रूर इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं मारियान साहब और आपके भाई मेहरान फरहमंद के मदद से करना चाहता था, इसके बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं मेहरबानी करके पूरा पूरा लिख दें।
हाजी साहब, ये मेमारियान साहब जो आप फरमा रहे हैं हमारे वर्कशॉप खरीदना चाहते थे, हमने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक दिन हमें बताए बगैर बैंक एक्सपर्ट को लेके हमारे यहाँ आ गए थे वर्कशॉप दिखाने के लिए। अब अगर इस बीच कोई फ्रॉड हुआ है तो असली कसूरवार मेमारियान है। मैं नहीं जानता कि इस मसले का मेरे भाई के साथ क्या ताल्लुक है।
लेकिन आपके भाई ने इतराफ़ किया है कि बैंक से लोन लेना चाहते थे और हाँ, आपकी जगह पर दस्तखत करने का भी एतराफ़ कर चुके हैं। ठीक है, आप मेहरबानी करके यही बातें जो अभी बयान की हैं बगैर कमी ज्यादती के कागज पर लिख दें और तशरीफ ले जाएं।
हाजी साहब, मेरे भाई का क्या होगा?
वो और उसका दोस्त मामले की तफसीलात मालूम होने तक हवालात में रहेंगे, दस्तखत करना ना भूलिए।
हाजी साहब नहीं हो सकता, मुझे अपने भाई को जरूर लेके जाना होगा, मेरे अब्बू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है।
कल उनको अदालत ले जाएंगे और उसके बाद मुमकिन है जेल। आप जमानत करने की फिक्र करें ताकि वक्ती तौर पर रिहा हो सकें। आपके आने का शुक्रिया।
السلام علیکم، صبح بخیر.
وعلیکم السلام، صبح بخیر.
شکریہ،
آپ ٹھیک ہیں؟
شکریہ.
زیادہ تکلف مت کیجیے.
ہیلو، انجینئر صاحب آ گئے. جی ضرور ضرور، خدا حافظ.
تشریف لائیے.
معاف کیجیے گا.
کوئی بات نہیں.
یاسم صاحبہ کیسی ہیں؟
ٹھیک ہیں، خدا کا شکر ہے.
اب واپس نہیں جائیں گی؟
اگر وہ نہیں مصروف کر سکا تو نہیں. یہ لیجیے.
شکریہ. میں آپ کا ناشتہ لانے کے لیے کہلواؤں؟
نہیں نہیں، میں نے آج گھر سے ہی ناشتہ کر لیا ہے. کوئی بات ہوئی ہے کیا؟
نہیں.
ہمیشہ کی طرح ہشاج بشاج نہیں ہیں آپ؟
نہیں، کچھ نہیں ہوا ہے.
تشریف رکھیے، بیٹھیے.
جی،
اپنے کام سے خوش تو ہیں آپ نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟
نہیں شکریہ، سب کچھ بہت ٹھیک ہے.
میرا بہت دل چاہتا ہے کہ یاسمن سے آپ کو ملواؤں.
میرا بھی اسے دیکھنے کا جی کرتا ہے.
یاسمن بھی تمہاری طرح بہت مہربان لڑکی ہے.
آپ کی صرف یہی ایک بیٹی ہے؟
نہیں، ایک بیٹا بھی ہے.
وہ بھی باہر ہوتے ہیں؟
ماں اس کو زبردستی لے گئی ہے، لیکن یاسمن کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی.
آپ کی بیگم کو باہر رہنا بہت پسند ہے.
ابتدا سے ہی وہ وہاں رہنے کو بہت پسند کرتی تھی.
اور آپ کو جانا پسند نہیں ہے؟
نہیں، میری عمر اب کسی نئی جگہ سے مانوس ہونے کے لیے بہت زیادہ ہو چکی ہے.
نہیں، آپ تو ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہیں.
سویرے سویرے دل میں امنگ پیدا کرنے والی بات کی تم نے. روز میر صاحب آئیے.
یہ لیجیے سر.
بہت شکریہ. فرمان صاحب کی چائے بھی یہیں رکھ دیجیے.
جی،
تشریف رکھیے.
ہاں، تو امریکہ میری بیوی کی امیدوں کا قبلہ تھا، کبھی بھی یہاں دل سے نہیں رہی.
آپ کو پہلے سے یہ علم تھا کہ وہ باہر ملک میں رہنا چاہتی ہیں؟
میرے مالی حالات اچھے تھے، وہ سمجھتی تھی کہ باہر رہنا زیادہ منطقی ہوگا.
اچھا، اگر آپ یہاں رہنا چاہتے تھے تو آپ نے ان سے کیوں شادی کیا؟
اچھا اور بے پردہ سوال، آج تک کسی نے مجھے سوال نہیں کیا.
نہیں جانتا، واقعی میں نہیں جانتا.
معاف کیجیے گا، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی.
پر نہیں، پریشان نہیں ہوا میں. زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کتنی تیزی سے گزر جاتی ہے. 3 سال ہوئے ہم کو جدا ہوئے. پہلے سوچتا تھا کہ اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، برداشت نہیں کر پاؤں گا، لیکن دیکھو 3 سال گزر گئے.
اچھا، تو دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟
ڈرتا ہوں میں.
کس چیز سے؟ آپ نے ایک بار شادی کر لی، اب تو نہیں ڈرنا چاہیے.
تمہاری اس بات سے مجھے میری ماں کی بات یاد آ گئی. وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ ایک گدا گھر کے لیے پہلے گھر سے بھیک مانگنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے لیے سب نارمل ہو جاتا ہے.
معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا.
میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں.
نہیں، آپ معاف کریں، میں نے واقعاً بہت برا سوال کیا ہے.
अच्छा, अगर आज कोई काम नहीं है तो मैं यासमान से मिलवाने का टाइम रखवाऊं?
नहीं, मुझे कोई काम नहीं है।
ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ।
ठीक है, सिर्फ इंजीनियर साहब, मेरा कोई खास मतलब नहीं था। चलती हूँ।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ओहो, फराहमान साहिबा, इंजीनियर साहब आ गए?
हाँ, अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई।
वालेकुम सलाम मेहरनोश, तुम ठीक हो?
ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
परस्तु कैसी है, बेबी कैसी है?
ठीक हूँ मेहरनोश, एक काम है, जरा जल्दी घर आ जाना।
मेहदी, आज मैं नहीं आ सकती।
लेकिन क्यों?
मुझे आज यासमान साहिबा से मिलना है।
यासमान कौन है?
हमारे बॉस की बेटी है।
किसी और दिन पर रखो, जल्दी से अम्मी लोगों के पास पहुँचो।
क्यों, क्या हुआ है?
मेहरनोश, इतने सवाल मत करो, प्लीज आज जल्दी घर आ जाओ। अगर अबू ने मेहरान पूछा तो कहोगे मेरे पास है।
माफ कीजिएगा इंजीनियर साहब, मुझे अभी अभी घर जाना होगा।
क्यों, क्या हुआ?
पता नहीं, मेरे भाई का भी फोन आया था, उसने कहा फौरन घर जाओ।
इस तरह से तूने मुझे परेशान कर दिया।
माफ कीजिएगा, मेरा बहुत जी चाहता था कि यासमान साहिबा से मिलूं। हो सकता हो तो मेरी तरफ से उसे माजरत कर लीजिएगा। सॉरी, बहुत बुरा हुआ।
नहीं, उस बात की फिक्र ना करो, मैंने उसे अभी फोन नहीं किया है, फिलहाल मैं तुम्हारी फिक्र में हूँ।
नहीं, मेरी फिक्र ना करे, कोई खास बात नहीं है, बस मुझे जाने की इजाजत है।
जरूर, कहे तो ड्राइवर को बुला देता हूँ, वो पहुँचा देगा।
नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी।
ये तो हो ही नहीं सकता, इजाजत दे। हेलो, तुम कहाँ हो भाई? ठीक है, नीचे रहिए, अभी फरमान साहिबा आ रही हैं, उनको घर तक पहुंचाना है। ठीक है, ठीक है, वापसी में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। जाइए, नीचे ड्राइवर इंतजार कर रहा है आपका। अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा, जरूर फोन कीजिएगा, इत्तला जरूर दीजिएगा।
बहुत शुक्रिया, मेहरबानी की आपने। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
सलाम अलैकुम बेटा।
वालेकुम अस्सलाम अब्बू।
ठीक हो बेटा? अम्मी कहाँ हैं? आज इस्माइल के बॉस से मुलाकात हुई थी। इस्माइल ने काम छोड़ दिया है।
मुझे लगता है।
क्यों?
कहता है कि मुझे अपना मुस्तकिल काम शुरू करना है।
ताज्जुब है
अब्बू, मैं चाहती थी कि।
अरे सलाम अलैकुम।
सलाम,
क्या हाल है?
बहुत बहुत शुक्रिया बेगम जी। बेटा
कुछ नहीं।
कुछ कहा?
नहीं, तुम्हारे आने की वजह से नहीं कह सकी।
यहां जाइए। इस औरत ने कहा है कि शादी की तारीख में ताखीर करें।
किस औरत ने?
वही औरत जिसके पास समाना मशवरे के लिए गई थी।
तुम्हें समाना ने बताया?
अरे नहीं, ऐसा नहीं कहा, कह रही थी कि इस्माइल से कहूं कि जहेज तैयार नहीं है। मैंने पूछा क्यों, कहती है कि नहीं जानती, इस डॉक्टर ने कहा है कि शादी से पहले जरूर मेरे पास आएगा और गैरा और गैरा।
ये एडवाइजर बिला वजह कुछ बात नहीं कहती, कुछ बात होगी जरूर जो कहना चाहती होगी।
मैं कहती हूं कि इनको ये काम निकाह से पहले करना चाहिए था।
उस वक्त उसने इस्माइल में कुछ नहीं देखा था कि डॉक्टर के पास जाती और बताती? बताओ।
क्या बताऊं, ये बात भी है, जो हालात आप बता रहे हैं, अगर इस तरह मामला किया जाए तो अल्लाह ही जानता क्या होएगा बाद में।
ठीक है, अगर अलायदगी होनी है तो बेहतर है कि कल की जगह आज ही हो जाए।
अम्मी, जरा फोन उठाएं, अगर इस्माइल हो तो बता दें कि मैं सो रही हूं।
मैं झूठ नहीं बोल सकती। हेलो जी, फरमाइए। सलाम मेहनुश बेटा, तुम ठीक हो? शुक्रिया जी जी, एक मिनट रुको, मैं बुलाती हूँ उसको। समाना,
अस्सलाम को मेहनुश, कैसी हो? नहीं, मैं आज रात नहीं आ सकती। नहीं हो सकता ना महरनोश।
समाना बहन उठ के आ जाओ ना, मैंने कहा कोई भी घर में नहीं है, मेहरान भी नहीं है।
नहीं आ सकती।
क्यों, क्या हुआ? मेहरान भी नहीं है
यार, इस्माइल नाराज होता है ना।
अरे खुदा के लिए छोड़ भी दो, इतना सर पर मत चढ़ाओ, अभी तो रुखसती नहीं हुई तुम्हारी।
तो क्या फर्क पड़ता है,
चंद दिन बाद रुखसती हो जाएगी तो फिर नहीं आने देगा।
अम्मी लोग भी नाराज होते
हैं, तुम इनको नहीं जानती, मुझे नहीं आने देंगे।
फोन अपनी अम्मी को देना, हमेशा की तरह मैं खुद ही इजाजत ले लेती हूँ। अरे उठ के आ जाओ पागल, सुबह तक बात करेंगे, हंसेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ नहीं थे।
मैं नहीं आ सकती महरनोश।
माशाल्लाह क्या जादू किया है उसने, जब तक सामने होता है हम हिल नहीं सकते, जब नहीं होता तब भी हम नहीं हिल सकते। आओ तुम्हें रोहित के बारे में कुछ बताना है।
क्या हुआ है?
तुम्हें पता है उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है।
हाँ ना, तलाक दी है तो, क्योंकि बीवी सात समंदर पार है और ये यहाँ पर है।
उनका बेटा भी आ रहा है।
तुम कैसे जानती हो?
जानती हूँ ना, आओगी तो बताऊंगी, आ जाओ।
महरनोश नहीं आ सकती ना, छोड़ो कल यूनिवर्सिटी से आते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ठीक है?
ओहो, कोई जरूरत नहीं आने की, कोई और काम तो नहीं है ना?
खुदा हाफिज।
पागल,
रात के वक्त कैसे उठ के आ जाए? तुम तो जानती हो कि उसका शोहर कितना हसास है, तो किस लिए इसरार कर रही हो?
आपकी हरकत बहुत गलत है अम्मी जान, आप मेरे फोन क्यों सुनती रहती हैं? और उसको शौहर कहते हैं? पागल आदमी को शौहर कहते हैं, पागल।
तुम्हारे लिए शौहर नहीं, उसके लिए तो शौहर है ना।
अरे ऐसे शौहर का तो बेड़ा गरक हो। अम्मी जान एक रात में जल्दी घर आई हूँ, प्लीज मेरा मूड नहीं ऑफ करें।
एक फोन करके देखो तुम्हारे अब्बू क्यों नहीं आए।
ठीक है, करती हूँ।
सलाम अलैकुम फरमान साहब।
माफ कीजिएगा, एक मिनट होल्ड। माफ कीजिएगा अम्मी जान। जी 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 जी, आपको कोई और काम तो नहीं है? जी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
कौन था?
किसको पूछ रही है?
यही जिसे बातें कर रही थी, एक अजनबी मर्द की आवाज थी।
अम्मी मेरे कंपनी के बॉस है, उन्हें एक जरूरी खबर देनी थी।
तुम्हें शर्म नहीं आती? सिर्फ दो तीन महीने में इतनी फ्री हो गई हो अपने बॉस से कि इस वक्त उसे फोन करती हो?
ओहो अम्मी जान, उन्हें एक जरूरी खबर देना था ना।
माँ को तो खुदा मौत दे, ये कोई स्टेबल है कि तुम्हारा जो जी चाहे करती रहो?
अम्मी जान छोड़ भी दे।
नहीं, पता है क्या है, तुम्हारे बाप का कसूर है, मुझे अपना काम नहीं करने देते, वरना मैं उस मनहूस ऑफिस में आके पूछती कि ये कौन है जो रात के ऐसे वक्त में मेरी बेटी से बात करने की जुरत करता है और तुम्हें उसे फोन करती हो।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान।
वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारी अम्मी का है?
सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मेहदी आ नहीं आया?
नहीं।
मोबाइल भी आप जा रहा है?
उसने कहा था कि मेहरान के साथ है।
मेहरान का भी मोबाइल बंद है।
आप इस वक्त तक कहाँ थे?
थोड़ी देर के लिए वर्कशॉप गया था, वहाँ भी नहीं थे, अहमद मियाँ भी नहीं जानते थे।
अरे भाई क्या हुआ है?
क्या कहूँ, मैं खुद भी परेशान हो गया हूँ, असर से लेकर अब तक दिल में अजीब सी बेकरारी है।
तुम्हें कब फोन किया था?
जब मैं कंपनी में थी।
अच्छा तो उसे एक फोन करो।
डरता हूँ कि उसे भी बिलावजा परेशान करूँ।
तुम बैठो यहाँ, बैठो यहाँ।
अरे
हेलो, सलाम वालेकुम। सलाम मेहदी बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ तुम्हारे अब्बू हैं।
हाँ, मुझे तो मुझे
ठीक है, ठीक है, आ जाओ मैं साथ के जाऊँ। आ जाओ, हम इंतजार करेंगे।
खुदा का शुक्र,
खुदा का शुक्र है। आप क्यों इतने परेशान हो गए थे, मुझे भी टेंशन में डाल दिया।
क्या बताऊं,
कर्ज तो अदा कर चुका है ना, है ना?
हाँ, कल कह रहा था कि दे चुका है।
खुदा का शुक्र, जाएं, जाके जरा हाथ मुंह धो के आइए, आदमी बन जाइए।
ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के
चाय लाती हूँ। जी
लाए दे मैं चाय निकाल लेती हूँ। अम्मी जान
मेहरनुश तुम्हारे अब्बू वैसे भी काफी परेशान है, मैं अपनी आवाज बुलंद नहीं करना चाहती, जाओ यहाँ से बाहर।
अम्मी जान यकीन माने मुझे यास्मीन साहिबा को मिलना था लेकिन मेहदी ने फोन कर दिया फोन फौरन घर जाओ, इसलिए मैंने जाकर उनसे छुट्टी ले ली। मैं फोन करके इसलिए बता रही थी कि वो परेशान हो गए थे कि क्या हुआ था, इसलिए मैंने फोन करके उनको बताया।
ये यास्मीन कौन है?
हमारे ऑफिस के चीफ एग्जीक्यूटिव रूही साहब की बेटी।
तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
क्योंकि अम्मी जान आप इतने गुस्से में थी, मैं घबरा गई, मैं डर गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ।
तुम्हें उससे किस लिए मिलना था?
ये लड़की बाहर से आई है, रूही साहब ने कहा कि ये चाहती है कि हमारे ऑफिस के सारे एम्प्लॉय से मिले।
तो इसके लिए तुम आधी रात को एक अजनबी मर्द को फोन करने की जरूरत महसूस करती हो?
ये कोई अजनबी मर्द थोड़ी है, हमारे ऑफिस के बॉस है। ठीक है आप सही कह रही है, मैंने गलती की है, बड़ी गलती की है, आप बिल्कुल सही कह रही है, माफ कर दीजिए। आपको यकीन दिलाने के लिए कल मैं रूही साहब से कहूंगी कि वो फोन कर आपको सारी बातें समझाए ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है? मैं अपनी अम्मी की प्यारी आंखों पर कुर्बान। लाइए मैं चाय निकालती हूँ, जाइए बैठिए, आप आराम कीजिए।